समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, एज द नेम सजेस्ट दैट वी विल डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स एंड सी द इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आर पोरिंग इन फ्रॉम आवर डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स स्प्रेड ओवर द कंट्री। क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं करिश्मा जो हम लोग अपने न्यूज बुलेटिन में नहीं ले पाते, बट ऑफकोर्स दैट डजंट अंडरमाइन देयर वर्थनेस बिकॉज दे आर वर्थ शेयरिंग। सो दैट्स परिक्रमा इज द शो इन विच वी ब्रिंग ऑल दोज इंटरेस्टिंग न्यूज for our listeners, and apart from that, of course, we have the business news, some news from the world of sports, and a very important topic for our Dateline India segment. और जाहिर सी बात है जो लास्ट सेगमेंट होता है सबको उसका इंतजार रहता है,
बिल्कुल,
जिसमें हम लोग याद करते हैं ऑन सम ऑफ द पर्सनालिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ डेथ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थ डेज टुडे। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज शो करिश्मा विद द
Dateline.
With the headlines first.
Yeah.
Prime Minister announces OCI cards to sixth generation of Indian origin citizens in Trinidad and Tobago. Congratulates the Caribbean nation for adopting UPI payment system.
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी, 5,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किए।
IMD forecasts heavy to very heavy rainfall from tomorrow till 8th of July in Himachal Pradesh.
रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना।
एंड इन विंबलडन टेनिस एंड श्रीराम बालाजी एंड हिज मेक्सिकन पार्टनर मिगेल रायस एडवांस टू सेकंड राउंड ऑफ मेंस डबल्स। And yes, we open the show with our very important segment, Dateline India, in which we'll take a look at the developments that take place at the national or global level. Today, we're going to talk about the Durand Cup. Yes, we shine a well-deserved spotlight on an extraordinary celebration of football, heritage and national spirit, the Durand Cup 2025. This morning in the heart of the capital, New Delhi, witnessed a proud moment as the President of India, Ms. Draupadi Murmu, unveiled and flagged off the prestigious trophies of the Durand Cup 2025. A glorious tradition continued, and with it, echoes of history rang through the corridors of Indian sport. Sports connect regions, nations and generations. They promote discipline, determination and a strong team spirit. Football especially is a passion for millions, and the Durand Cup is not just a tournament, it is a symbol of India's footballing heartbeat.
और ये कितना बड़ा प्रतीक है, इससे समझिए कि 1888 में स्थापित ड्यूरेंट कप न केवल एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे पुराना भी है। दुनिया के कई आधुनिक फुटबॉल संस्थाओं के आकार लेने से पहले ही भारत में पहले से ही चैंपियंस का अपना टूर्नामेंट था। मूल रूप से सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट द्वारा शिमला में शुरू किया गया ये टूर्नामेंट ब्रिटिश सैनिकों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गया।
Absolutely, Karishma. Clubs like Mohun Bagan, East Bengal and Army 11 turned the Durand Cup into a fiercely contested battle of pride. From colonial roots to democratic dreams, the Durand Cup has mirrored India's journey. It has been a field where strategy meets skill and where the roar of the crowd unites people across languages, states and backgrounds. And this year, as the Durand Cup celebrates another grand chapter, it becomes more than just a football tournament. It becomes a national celebration of the youth, spirit and unity.
सैन्य दस्तों और कुलीन क्लबों सहित पूरे देश की टीमों के साथ ड्यूरेंड कप इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि खेल किस तरह से बाधाओं को तोड़ सकता है. राष्ट्रपति ने भी ये बताया कि फुटबॉल किस तरह धीरज, टीम भावना और एकता को बढ़ावा देता है. उन्होंने एक सदी से भी अधिक समय से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रशंसा की.
ड्यूरांड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है. अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं. इस बार ड्यूरांड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है. भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है. पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है.
Indeed, the role of our armed forces cannot be praised enough. From organizing and supporting the tournament to fielding some of the most formidable teams, the Indian Army, Navy and Air Force have ensured that the spirit of the Durand Cup thrives. The Durand Cup is not just about winning or losing. It's about courage, sportsmanship and carrying forward a glorious tradition. For many in uniform, it's a matter of honor to participate.
समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित थे. दोनों ही सशस्त्र बलों में खेल के प्रबल समर्थक हैं. उनकी उपस्थिति इस बात को रेखांकित करती है कि चरित्र और सौहार्द को आकार देने में खेल की भूमिका को सेना कितना महत्व देती है.
And now let's tell our listeners something about the Khelo India program. Well, our Prime Minister recognizes the significant contribution of fostering and nurturing sporting talent and also aims to create an optimal environment for the growth of sports in India. Khelo India was initiated in the pursuance of same. Khelo India is a scheme envisioned by our Prime Minister in 2017-18 to give a platform to grassroots athletes and built sports infrastructure across the country, resulting in turning India into a sporting nation.
खेलो इंडिया योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है. खेलों में जनभागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र में खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है.
Yes, let's not forget that events like the Durand Cup also give India's young talent a platform to shine. As football gains momentum in India, especially among the youth, such tournaments help scout, nurture and support emerging talent from all corners of the country, from Mizoram to Maharashtra and Kerala to Kashmir.
और ड्यूरेंड कप सिर्फ किसी खास क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि गुवाहाटी, बेंगलुरु और इम्फाल जैसे शहरों में होने वाले मैचों के साथ ये वाकई फुटबॉल को हर घर तक पहुंचा रहा है. आज जब ट्रॉफियां पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू करती हैं तो वे अपने साथ सिर्फ चांदी और सोने से कहीं ज्यादा कुछ लेकर आती हैं. वे कहानियां लेकर आती हैं, हिम्मत की, विरासत की, सपनों की जो अभी पूरे होने बाकी हैं.
जज्बा दिल में भरा सा पागल पन सा सदा सा
ड्यूरेंड कप का 2025 संस्करण 23 जुलाई से 23 अगस्त तक पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड सहित 5 भारतीय राज्यों के 6 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा.
Defending champions North East United FC will return to the tournament after clinching the historic maiden title last year, defeating record title holders Mohun Bagan Super Giant in a thrilling final.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it.
Well, so to every young footballer out there, to every fan cheering from the stands, and to every citizen who believes in the unifying power of sports, the Durand Cup 2025 is for you. A tribute to our past, a beacon for our future.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
That's right, Karishma, and we are starting our journey from the capital itself, where the 29th International Conference and Exhibition on Broadcast and Media Technology, BES Expo, is currently underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The theme of the conference this year is Transforming the Media Landscape Through AI, Create, Collaborate and Monetize.
The three-day expo, which began yesterday, is witnessing eminent broadcasters, media industry professionals and eminent speakers from the country as well as abroad to deliver lectures and discuss state-of-the-art broadcasting topics. Several broadcasting equipment manufacturers are also displaying latest products with cutting-edge technology, which are meant to pave the way for revolutionizing the broadcasting services in the country. Talking exclusively to Akashvani News, an exhibitor named Viren Satra talked about how the expo is bringing different stakeholders under one roof and how they're expressing interest in using technology in their own settings as well.
I'm from Monarch. I'm chief consultant of the Monarch. We are a Bombay-based company and we are manufacturing the graphics technology based on the AI technology, which is called augmented reality system. We have multi-window system and we have a CG system also. All products are made in India.
The three-day event, which is being organized in hall numbers 8, 9 and 10, will culminate tomorrow following another series of insightful lectures and sessions. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
नागपुर में हाल ही में बेहद खूबसूरत संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन किया गया. सामान्य जनता में लोकतंत्र की भावना को यह पार्क और मजबूत करेगा. आइए अधिक जानकारी लेते हैं हमारे प्रतिनिधि से.
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वैश्विक मूल्यों और भारतीय शाश्वत मूल्यों को मिलाकर भारतीय संविधान की रचना की. संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल है. देश के नागरिकों को प्रस्तावना में दिए गए मूल्यों को अपनाना चाहिए. इससे देश के 90% समस्याएं हमेशा के लिए हल हो जाएंगी, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा. संविधान प्रस्तावना पार्क और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा नागपुर में हाल ही में किया गया. इस अवसर पर वे बोल रहे थे. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने संविधान के अमृत जयंती वर्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने और फिर नागपुर की अपनी पहली यात्रा में संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन करने के अवसर पर संतोष व्यक्त किया. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी.
And now from west we move on to the east part of India, to the northeast particularly. Well, Van Mahotsav or the Festival of Trees is an annual tree planting movement in our country that is celebrated during the first week of July. Initiated in 1950, it aims to raise awareness about the importance of forest and environmental conservation. The 76th Van Mahotsav, which is being held in July 2025, is being celebrated with great zeal across the districts of Manipur, a state known for its rich biodiversity and deep cultural connection to nature. The festival serves as a collective pledge to restore green cover, combat climate change, and preserve the ecological balance of the state. A report from our Imphal correspondent J.J. Thokchom.
The government of Manipur, led by the Forest Department, organized statewide programs to mark the occasions of Van Mahotsav. Tree plantation drives were held simultaneously across various districts, including Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Thaubal, Kakching, Surachandpur, Senapati, Ukhrul, Taminglong, and Kamjong districts. Each district had its own set of activities planned in collaboration with local schools, panchayats, police departments, non-governmental organizations, and community groups. Many districts adopted the popular theme Ek Per Ma Ke Naam, One Tree in Mother's Name, encouraging people to plant trees as a tribute to their mothers. JJ Thakchom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल को प्राथमिकता दी है। गुजरात में पिछले 5 वर्षों में महिला नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियों में 21% का इजाफा हुआ है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
गुजरात में महिला संचालित दूध समितियां अब न सिर्फ सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी है बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा योगदान दे रही है। कल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर गुजरात सरकार ने राज्य में बढ़ती महिला भागीदारी के कई प्रेरक आंकड़े साझा किए। इसके अनुसार 2020 से 2025 के बीच महिला नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियां की संख्या 3,764 से 21% बढ़कर 4,562 हो गई। महिला दूध समितियों की वार्षिक आय में 43% की शानदार वृद्धि हुई जो अब 9000 करोड़ रुपए के पार हुई है। राज्य के 36 लाख दूध उत्पादक सदस्यों में से लगभग 12 लाख यानी करीब 32% महिला सदस्य है। ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में भी महिलाओं की भागीदारी 14% बढ़ के 80,000 हो गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि गुजरात में महिला संचालित दूध सहकारी समितियों द्वारा दूध संपादन 2020 में 41 लाख लीटर प्रतिदिन से 39% बढ़कर 2025 में 57 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। अनिल पटेल, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
Assam Rifles, one of the oldest central paramilitary forces in the country, continues to transcend its conventional security duties by making a profound impact on the weaker sections of the society through its CSR efforts across Nagaland. These initiatives address critical areas such as education, health, environment, and community welfare. Assam Rifles strongly believes that education is one of the few interventions capable of truly transforming lives. One of its flagship initiatives in this direction is the establishment of the Center of Excellence and Wellness, a dedicated program aimed at supporting underprivileged students from Nagaland in preparing for competitive entrance exams to India's premier institutions in engineering and medicine. Let's listen more from our Kohima correspondent.
Launched in 2022, the Captain and Kangurise Mahavir Chakra Center of Excellence and Wellness was initiated by the then Director General of Assam Rifles, Lieutenant General P.C. Nair. A first of its kind initiative, the Central is a collaborative effort between Assam Rifles, Axis Bank and the National Integrity and Educational Development Organization, NIDO. It was established to secure a better future for the youth of Nagaland by providing quality education. Support and mentorship. Director General of Assam Rifles, Lieutenant General Vikas Lakhera, has emphasized the transformative role of these centers.
This particular center is an initiative by Assam Rifles, partnering NIDO and Axis Bank. So through CSR, Axis Bank funds the project. NIDO is an education partner who hires the teachers, and with Assam Rifle and NIDO, we select children through a selection process. The center started in 2022, and this is the fourth batch today. I am very proud to say that our results have been 100% in this institute. So we started last year in Ghaspani, a similar center, and by end of this month, there will be another center in Mukokchung. So there will be three in Nagaland, and they are named after heroes of the land in Assam Rifles. So this center is after Captain Kangurise Mahavir Chakra. In Mukokchung, it will be after Haldar Maringao Shore Chakra. And in Ghaspani, it is after a brave heart of Assam Rifles, Subhas Chhetri. We have three centers now.
The centers focus on personality development and holistic growth. For Parikrama, Asunyu Kohima.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने आज 3 विकेट पर 77 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 171 रन बना लिए हैं। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल के शानदार 269 रन की बदौलत भारत ने कल पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुभमन ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान बनकर इतिहास रच दिया।
Indeed, a very, very proud moment for India. And now moving on to business news. Well, the benchmark domestic equity indices today staged a stellar recovery from intraday lows and ended with modest gains of over 0.2%. Both the indices picked up pace during the last hour of trade, reversing marginal losses incurred post-mid-session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 193 points to close at 83,433. National Stock Exchange, Nifty 50, added 56 points to settle at 25,461.
समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। इसी क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
We pay our tributes to patriot saint Swami Vivekanand, who died on the 4th of July 1902. His vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight and broad human sympathy, made an irresistible appeal to humans across the world who came in contact with him. At the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, Swami Vivekanand represented India and its cultural heritage.
I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee.
Through his mission of interpreting India's spiritual culture, especially Vedantic philosophy, Swami Vivekananda inspired the Indian national consciousness. He enriched religious consciousness through the rational and humanistic teachings of the Vedanta philosophy. His mission was both national and international. A lover of mankind, he strove to promote peace and human brotherhood.
Swami Vivekananda organized the Ramakrishna Order of Monks, which is the most outstanding religious organization of modern India.
Swami Vivekananda once spoke of himself as a condensed India. In the course of a short life of 39 years, he left for posterity his four classics, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raj Yoga. Salutes the great patriot saint Swami Vivekananda.
We also remember Gandhian freedom fighter Pingala Venkaiah, who died on the 4th of July 1963. India's national flag is based upon his design, which Pingala Venkaiah first presented to Mahatma Gandhi in 1921.
Pingala Venkaiah was born on the 2nd of August 1876 in Krishna district of Andhra Pradesh. He served as a soldier in the British Army in South Africa during the Anglo-Boer War in Africa, where he first met Mahatma Gandhi. He was 19 when the meeting took place and formed an association which would last for more than 50 years.
Pingala Venkaiah met Gandhiji once again in Vijayawada and showed him his publication with the various designs of the flag. Acknowledging the need for a national flag, Gandhiji then asked Venkaiah to design a new flag and present it at the National Congress meeting in 1921. Initially, Venkaiah came up with red and green colors, but it later evolved with saffron color, a spinning wheel at the center, and a third color, white. The flag was officially adopted by the Indian National Congress in 1931.
In 2009, the Government of India issued a stamp to commemorate him. In 2015, Vijayawada Station was named after Pingala Venkaiah. We pay tribute to the great nationalist.
We also remember independence activist Hemant Kumar Nayak, who died on the 4th of July 1932. A resident of Medinipur, West Bengal, Hemant joined a large gathering in his hometown to celebrate the All India Prisoners' Day on 4th of July 1932. Despite permission from the authorities, the police forcefully declared the meeting unlawful and tried to disperse the gathering. When the people refused to disperse, the police opened fire, killing many people on the spot, including Hemant Kumar Nayak. We salute the brave martyr.
And now when we remember some more personalities, well, we begin with Nanak Singh. Today we are remembering him on his birth anniversary, a poet, songwriter and novelist of predominantly Punjabi language. His literary works in support of India's independence movement led the British to arrest him. He published novels that won him literary acclaim. And well, he was born in a poor Punjabi Hindu family in Jhelum district, and he was born as Hans Raj. Then he later changed his name to Nanak Singh after adopting Sikhism. Although he did not receive a formal education, he started writing at a very young age by writing verses on historical events. Later, he started to write devotional songs encouraging the community to join the Gurudwara reform movement.
और इसी के साथ आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार भारत व्यास को. उनका जन्म 6 जुलाई 1918 को बीकानेर में हुआ था. भारत व्यास जी ने अपने गीतों में भक्ति, देशभक्ति और जीवन के गहरे भाव को जगह दी. उनके लिखे अमर गीत ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी स्कूलों और प्रार्थनाओं में गूंजता है. भारत व्यास ने सती सुलोचना, संत ज्ञानेश्वर, गूंज उठी शहनाई, संग्राम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत दिए. उनकी भाषा सरल थी लेकिन उनके भाव बहुत गहरे थे.
And the next personality that we're going to remember is a very, very fine actress. And apart from that, she was known as the beauty queen. Any guesses? Yes, we're going to talk about Naseem Bano, Saira Bano's mother. And she started her acting career in the mid-30s and continued to act till mid-50s. Her first film was Hoon Ka Hoon, which was based on Hamlet, with Saurabh Modi, under whose Minerva movie tone banner she acted for several years. Her high point came with Modi's Pukar, in which she played the role of Empress Noor Jahan. And according to composer Naushad, she got the sobriquet Pari Chehra, that is fairy face. She was through publicity of advertisements of her films. She was the mother of Saira Bano and mother-in-law to actor Dilip Kumar.
तो इसी के साथ नसीम बानो ने पुकार और ताजमहल जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी अदाकारी और शालीनता ने सबका दिल जीत लिया. कई ऐसी फिल्में आई जिनके गाने आज भी लोगों की जुबां पर है. तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया आई हैव करिश्मा टू शेयर विद आवर लिसनर्स दैट नसीम बानोज मदर शमशाद बेगम, प्लीज डोंट कंफ्यूज हर विद द प्लेबैक सिंगर बट शी हैड द सेम नेम, शमशाद बेगम वॉज अ फेमस एंड वेल अर्निंग सिंगर एंड द वाइफ ऑफ दोज डेज. इनफैक्ट पुरानी दिल्लों की बहुत ही मशहूर तवायफों में उनका नाम था उनकी मदर का. यू वोंट बिलीव दैट इयर्स लेटर व्हेन नसीम वाज इन हर प्राइम एंड अर्निंग अ सैलरी ऑफ 3,500, शी सेड दैट हर मदर वाज इवन एट दैट टाइम इन हर ओल्ड एज अर्निंग मोर देन शी वाज. तो यू कैन इमेजिन क्योंकि क्या सिंगिंग उनकी भी रही होगी. सो वेल इन द 30s 40s सैलरी लाइक 3,500 वाज प्रोबब्ली 3 क्रोर्स टुडे.
बिल्कुल बहुत ज्यादा थी.
And yes, with that, I think हम लोग को अपना शो रैप अप करना चाहिए.
बिल्कुल. तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. तो इसी के साथ परिक्रमा का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है.
नमस्कार.